ओम शांति। आदरणीय राजू भाई जी का हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं आदरणीय राजू भाई जी को, जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, सब जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि हम सब के पास जो मुरली आती है वो कौन बेचता है, मालूम है सबको? ब्राह्मणों का श्वास, ब्राह्मणों का प्राण, ब्राह्मणों का भोजन, ब्राह्मणों का जीवन जो मुरली है, उस मुरली को, बाबा की मुरली को हम सबके पास भेजने का कार्य आदरणीय राजू भाई जी करते हैं। उस मुरली में से हम सबके लिए मक्खन निकाल करके वरदान, स्लोगन और सार भी हम सबको बहुत सरल सरल करके, जैसे मक्खन के रूप में हमको मिलता है, और वो मक्खन हम सब की आत्माओं को शक्ति देता है, वो शक्ति ही हमें इस ईश्वरीय जीवन में चलाती है। तो आदरणीय राजू भाई जी, आपका लौकिक जन्म, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे से गांव में हुआ। माता पिता को अध्यात्म में बहुत रुचि थी। सन 1960 से ईश्वरी विश्वविद्यालय की गतिविधियां आप के ही लौकिक घर में शुरू हुई। आप अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे और सन 1971 में आप प्रथम बार ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू आए। उसी समय आपके मन में समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। अतः माता पिता की स्वीकृति लेकर 1972 से आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। मुख्यालय की विभिन्न गतिविधियों में विशेष रुचि ली। मनसा वाचा कर्मणा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट में सेवा करते हुए 1976 से विशेष ईश्वरी महावाक्यों को सिंधी से हिंदी में अनुवाद कर टाइप करके उन महावाक्यों को सभी सेवा केंद्रों पर भेजने की सेवा में आप सहयोगी बने। वर्तमान समय देश विदेश में जो ईश्वरी महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं अथवा जो आध्यात्मिक पढ़ाई के लेसन हेडक्वार्टर से भेजे जाते हैं उसमें आपका विशेष योगदान है। मुख्यालय से जो प्रति मास स्वोन्नति हेतु पत्र पुष्प निकलता है जिसमें विशेष परमात्मा प्रेरणाएं दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही ईश्वरीय सेवाओं का समाचार होता वो आप ही प्रकाशित कर हम सब के पास पहुंचाते हैं। आपको परमात्मा पिता द्वारा अव्यक्त रूप से विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान मिला। आप ईश्वरीय महावाक्यों से हर वर्ग की आत्माओं के प्रति प्रेरणाओं को संग्रहित कर समय प्रति समय अनेक पुस्तकें तैयार की। इन सब सेवाओं के साथ साथ मुख्यालय में जो दादी जी के पास पत्र आते हैं उन पत्रों का उत्तर आदि देने का कार्य भी आप देखते हैं। हिंदी टाइपिंग के साथ साथ फोटोकॉपी डिपार्टमेंट तथा विशेष स्टेशनरी आदि भी आप संभालते हैं। सतत अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि में जो ईश्वरीय ज्ञान का खजाना भरा है तथा योग की जो गहन अनुभूति की है उसके आधार पर आप अपनी क्लासेस अथवा प्रवचन के द्वारा अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान समय आदरणीय राजू भाई जी का एक विशेष अंदर से संकल्प कि आज हम जो अन्न खाते हैं वो कितना जहरीला होता है लेकिन वो अन्न शुद्ध हो और बाबा की याद का हो तो इसलिए उन्होंने शाश्वत योगिक खेती नए युग के लिए नया कदम इस अभियान का बहुत जोर शोर से उन्होंने पूरे भारत तो क्या विदेश में भी ये कार्य शुरू किया है। और अभी थोड़े ही दिन पहले राजस्थान जोन में ये अभियान निकला 12 अभियान जहां बहुत अच्छी सेवाएं हुई तो दिन प्रतिदिन ये सेवाएं बढ़ती जा रही है और अनेक किसान भाई बहन इसका लाभ ले रहे हैं, ऐसी खेती कर रहे हैं। उस पर भी राजू भाई ने बहुत बहुत सेवाएं की हैं और अनेक आत्माओं तक ये लाभ पहुंचाया है। अभी निश्चय बुद्धि इस विषय पर हम सभी ब्राह्मणों का क्लास कराएंगे। आदरणीय राजू भाई जी जोरदार तालियों से स्वागत।
ओम शांति। बाबा ने हम सब बच्चों को स्वयं की पहचान दी, अपना बनाया और अपना बनाते ही अपना सत्य परिचय दिया। समय की पहचान मिली, इतना ऊंचा श्रेष्ठ अलौकिक परिवार मिला। समझ के साथ पहचान हुई और पहचान के साथ अनुभव हुए, अनुभव के बाद प्राप्तियां शुरू हुई और हमारा निश्चय अटूट बनता गया। बाबा के जितने भी बच्चे नए और पुराने हैं, बाबा कई बार कहते हैं कि आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ VVVIP हो, हैं सभी निश्चय है। जिस भगवान को बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर बहुत बड़े बड़े टाइटल लेने वाले नहीं पहचान सके, उसको गुप्त रूप में आए हुए पिता को आप बच्चों ने पहचाना, और पहचाना ही नहीं लेकिन उसके बच्चे बने और उसके ऊपर अपना जीवन बलिहार कर दिया, न्योछावर हो गए। तो हम सब बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे इतना निश्चिंत स्थिति में रहते हैं कि हर सीन बहुत बहुत कल्याणकारी है। पहले तो हम सबको अपने आप में निश्चय हुआ, जो हूँ जैसा हूँ, स्वयं को पहचान लिया और पहचान करके अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गए। निश्चय हो गया कि मैं कल्प पहले वाली वही विजयी आत्मा हूँ जिसने कल्प कल्प माया के विकारों पर विजय प्राप्त की है, और मैं वही देवी देवता घराने की आत्मा हूँ जिसको भगवान ने फिर से चुन करके अपना बच्चा बनाया है। है निश्चय ये, जिसको ये निश्चय है वो हाथ तो उठाओ देखें, तो सबको है। अच्छा, कई तो नए नए बाबा के बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं हाथ उठाओ, पहली बार वाले कम है लेकिन। तो आप सभी ये बात तो अच्छी तरह से समझ गए हैं, बाबा ने हम सबको अनादि स्वरूप की पहचान दी, आदि स्वरूप की पहचान दी, मध्य काल में जो हम सब ने भक्ति प्रारंभ की द्वापर युग में, उस भक्ति काल की भी पहचान दी, और अंत समय में जब बाबा हम सबको मिला, किनको मिला ये भी पहचान मिली, और पहचान के साथ साथ ये निश्चय हो गया कि बाबा संगम युग पर उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बहुत बहुत पुराने भक्त हैं। ये बात शायद कोई ने अभी तक न महसूस की हो, क्योंकि इस जन्म में कईयों ने तो भक्ति की ही नहीं है, हमने ही नहीं की। बचपन में बाबा के बच्चे बन गए, भक्ति क्या होती है, तीर्थ क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बाबा ने हम सबको ये पक्का कराया कि बच्चे तुम सब बहुत बहुत पुराने से पुराने भक्त हो, तुमने जितना शास्त्रों की स्टडी की है उतना कोई ने नहीं की, वो तो सब नए भक्त हैं। मैं पुराने भक्तों को ही भक्ति का फल देने के लिए आता हूँ, और सचमुच इस ज्ञान मार्ग में वही बच्चे फास्ट स्पीड से आगे बढ़ते हैं जिनका भक्ति काल पूरा हुआ। बाबा उन्हीं बच्चों को ज्ञान और योग सिखा करके भक्ति का फल गति और सदगति देते हैं। तो पहला निश्चय तो मैं समझता हूँ बाबा के हर बच्चे को ये बहुत पक्का है कि मैं देवी देवता घराने की आत्मा इस चक्र में पार्ट प्ले करते करते अंतिम समय में पहुंची हूँ, और बाबा ने मुझे सेलेक्ट करके अपना बच्चा बनाया है। बाबा की सिलेक्शन रैंक तो नहीं हो सकती, जरूर वही देवता घराने की आत्माएं भगवान को पहचानेंगी, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगी, श्रीमत पर चल करके दिव्य गुणों को धारण करेंगी, उनके लिए कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं होगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। नहीं तो आजकल की दुनिया में लोग समझते हैं कि इतना बड़ा कलयुग का विस्तार, माया का पाम, तो बाबा कहते हैं जबकि चारों ओर विकारों की आग लगी हुई है, ऐसे समय में सहज रीति से अपनी जीवन निर्विकारी बना लेना और घर गृहस्थ में रह करके पवित्रता के व्रत को पालन कर लेना, ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल बात है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए कभी भी ये नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है। कहते हम तो देवता थे, हमने तो कल्प कल्प इन विकारों को जीता था, हम ही पावन बने थे और बाबा अभी मुझे फिर से ऐसा बना रहा है। जिस बच्चे को ये निश्चय है उनका समय युद्ध में नहीं जाता, अधिक समय वो विकारों से युद्ध में नहीं गंवाते, वो अनुभव ही करते हैं मैं तो बाबा आपका विजयी बच्चा हूँ, कल्प कल्प मैंने विजय पाई है, इन विकारों के अभी अधीन हो गए थे लेकिन यही मेरे अंत समय में दास बने, इन पर मैंने जीत पाई और मैं विजयी बाबा का विजयी रतन हूँ। अगर ये निश्चय है तो पुरुषार्थ करते हुए बहुत निश्चिंत स्थिति में हम रह सकते हैं। तो स्वयं के प्रति हरेक अपने निश्चय की डिग्री को देखना, निश्चय कितना है और उस निश्चय के आधार से हमारी जीवन कितनी निश्चिंत बनी है, कैसे हम इस कलयुग की दुनिया में बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहते हैं, वो हमारे निश्चय की परिभाषा है। ब्रह्मा बाबा जिनके सामने कई प्रकार के पेपर आए, लौकिक जीवन में इतना आदर्श जीवन, इतना माननीय, समाज के अंदर इतने प्रतिष्ठित, और बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई और प्रवेशता होते ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे मैं तो रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, वाट वेंदे बामन पात, सिंधी में कहता है बाबा कि मैं तो रास्ते चलते फंस गया, शिव बाबा आया और लोगों ने मुझे ही गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन आप देखो बाबा को कितना शिव बाबा पर अटूट निश्चय था कि उसका कार्य है, उनके बच्चे हैं, उसकी श्रीमत को ही पालन कर रहे हैं, इसलिए कोई कितना भी विरोध करे ये बेचारे अनजान हैं, इनको पता ही नहीं है। नहीं तो बाबा को कहते थे बाबा आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है, आप एक सिर्फ बात कहना छोड़ दो आपकी संस्था बहुत आगे चली जाएगी, ये जो आप पवित्रता की बात करते हैं इसके कारण ही आपके आगे इतनी परीक्षाएं आ रही हैं, इतना विरोध हो रहा है। तो बाबा कहता था अरे मैं तो खुद प्रवृत्ति वाला, मैं खुद गृहस्थी रहा, मुझे तो कभी ये ज्ञान ही नहीं था, भले मैंने गीता का पाठ किया, लोगों को कहता था गीता में लिखा है काम क्रोध नरक के द्वार हैं, लेकिन मैंने खुद ही नहीं जीता था। अब उसी बाबा स्वयं कह रहा है और ये बच्चे जीत रहे हैं उन विकारों को, तो मैं कैसे कहूँ इन पर नहीं जीत पाओ, शिव बाबा की श्रीमत पालन कर रहे हैं। तो बाबा का जो अटूट निश्चय था उस निश्चय के फाउंडेशन से आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितना अचल अडोल और कितना वृद्धि को प्राप्त हुआ है वो हम सब देख रहे हैं। परीक्षाएं कम नहीं आई, समस्याएं तो इतनी आई, बाबा ने शिव बाबा ने भी बच्चों का पेपर लिया, देखें कितना निश्चय है। सुना होगा आप लोगों ने जब एक बेगरी पार्ट यज्ञ में शुरू हुआ और ऐसा पार्ट आया जो 300-400 लोग खाने वाले और भंडारे के अंदर चार आने भी नहीं, पैसा ही नहीं, और जो कुछ लेकर के आए थे सामान कराची से वो भी सब खत्म हो गया, बेच दिया, कुछ भी यज्ञ में न हो और 300-400 लोग खाने वाले हों, साकार में तो ब्रह्मा बाबा ही थे, शिव बाबा तो निराकार गुप्त, इनको निश्चय कितना था ये बाबा के भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने भगवान को जीवन समर्पित की है, इसकी पालना वो खुद करेगा, इसलिए वो इतना निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहे। जो आप लोगों ने देखा है एक बाबा का पोज, एक झरने के ऊपर पहाड़ी के ऊपर बाबा लेटा हुआ है, बहुत मस्ती की वो मुद्रा है बाबा की लेटी हुई, जिसमें कोई भी गम नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, कोई भी चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह। मेरी दादियां सुनाती हैं, एक दिन बाबा ने ऐसे ही अचानक मुरली चला दी कि बच्चे आए हैं, कल होली का त्योहार है, इनको जलेबी का भोग खिलाना है, जलेबी बनेगी। सुना होगा, मैंने सुनाई है बात कई बार क्लास में, तो भंडारी वाली बहन को पता चला बाबा ने कहा जलेबी का भोग लगेगा, और भंडारे के अंदर तो ना आटा है, ना घी है, ना चीनी है, कुछ भी तो है नहीं, और सवेरे सवेरे भोग कैसे जलेबी का बनेगा। वो दौड़ करके बाबा के पास गई, बाबा को बोला, बाबा ये क्या आपने बोला, जलेबी का भोग, खाना ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहता है, बच्ची मैंने नहीं बोला, ऊपर वाले ने बोला। इतना निश्चय था बाबा को। अच्छा, ऊपर वाले ने बोला है तो ऊपर वाला कैसे खिलाएगा, ऊपर से परम धाम से भेजेगा क्या। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाबा तो परीक्षा लेता है, आज सभी 2 बजे उठ करके योग करो, योग ही हमारे पास सबसे बड़ा शस्त्र है, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी बात हो, बैठ जाओ योग में, बाबा सब प्रकार की मदद करने के लिए बन जाएगा। तो जब 2 बजे योग चालू किया, लाल लाइट हुई, तो सामने एक बहुत विरोधी भाई रहता था, सिंधी भाई था, विरोध था उसका, बाबा को देख के वो गालियां देता था, उसकी नींद फिट गई, और उसकी नींद फिटी तो कहती, आज ये होली के दिन 2 बजे बाबा ने इन बच्चियों को क्यों उठाया। जानता था बाबा को, पुराना था, उसकी युगल आती थी छिप छिप करके, तो उसको जगा करके कहता है, देखो आज बाबा को क्या हो गया, 2 बजे बच्चों को जगा दिया, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। कहता है, तेरे पास जितना रखा है सब लेके आ जा, अब मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अलमारी में जितना पैसा रखा है ना, तुम अभी ले जा, दे आ जा करके। तो कहती है वो माता, कहती है, भाई सुबह दे दूंगी, अभी तो सोने दो।
अपनी अंतर आत्मा को शांत।
तो जब उसकी 2 बजे नींद पीती और उसने कहा कि जो कुछ रखा है ले जाओ, तो उसकी माता ने, युगल ने कहा कि अरे सवेरे दे दूं, तो कहता है सवेरे तक तो मेरी बुद्धि बदल जाएगी, अभी दे आओ। तो रात को ही वो 2 बजे सब दे आया, दे के आई और सवेरे जो चीजें चाहिए थी आ गई और जलेबी का भोग समय पर लग गया। तो बाबा को कितना अपने में और बाबा में कितना निश्चय था कि खिलाने वाला वो है, बच्चे उसके हैं, कार्य उसका है, हम बीच में क्यों डिस्टर्ब हों। निश्चिंत बाबा एकदम बेफिक्र बादशाह होकर के रहे। अगर निश्चय है सचमुच भगवान हमको मिला है, उसकी पढ़ाई है, उसकी पालना है, उसका यज्ञ है, उसकी संस्था है, तो किसी भी परीक्षा में घबराएंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे, क्यों क्या कैसे में उलझेंगे नहीं। एक बात नहीं लेकिन कई ऐसी बातें बाबा के सामने आई। एक बार बेगरी पार्ट के समय दादी जो थी ना बाबा की लौकिक बच्ची निर्मल शांता दादी, उनको दमा की बीमारी थी और दमा की बीमारी की दवाई लग नहीं रही थी कोई भी। तो ब्रह्मा बाबा ने एक संदेशी को बोला, तुम जाओ बच्ची की दवाई बाबा से पूछ के आओ। तो वो संदेशी आई ऊपर से, कहती है बाबा ने कहा बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। सुनो पहले सुनो, ताली नहीं बजाओ। अब शिव बाबा ऊपर से संदेश संदेशी के द्वारा दे रहा है कि बच्ची की दमा की बीमारी ठीक हो जाएगी, इसको बर्फ के पानी से नहला दो। अभी किसको ये निश्चय होगा, हो सकता है ये निश्चय, कितनी बड़ी बात है किसी को दमा जैसी बीमारी हो और उसको कहा जाए तुम बर्फ के पानी से नहा दो। तो ब्रह्मा बाबा की परीक्षा थी, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी थी, पता नहीं क्या होगा, ये संदेशी कहीं ऐसी अपनी बात तो नहीं सुना रही है। फिर भी बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा का अगर डायरेक्शन है तो बच्ची को भले नहीं लाओ। तो बच्ची को ले गए बाथरूम में बिठाया और संदेशी को कहा तुम ही बर्फ का पानी डालना। तो बर्फ का पानी लेकर के जो वो सामने खड़ी हुई, फिर से वो ट्रांस में चली गई। वो बैठी है नहाने के लिए, को जरा भी न बाबा को संशय न बच्ची को संशय, तो भगवान ने कहा है ठीक हो जाएगी। और जब वो ऐसे गई, डालने जा रही थी डाल नहीं पाई और बाबा ने उसको फिर से खींच लिया। अब जब बाबा ने वतन में खींच लिया तो वापस बाबा ने उसको चिरंजीवी भव अमर भव का वरदान दे दिया। 99 की उम्र की तक बाबा परदादी हमारी जिंदा रही, जो बिल्कुल कम आयु थी उनके ज्योतिषियों ने कहा था इतनी आयु है, उसको आयुष का वरदान मिल गया। तो बाबा तो जानी जाना नहा रहे, इसलिए ब्रह्मा बाबा किसी भी परीक्षा में हलचल में नहीं आए। परीक्षाएं कितनी भी आई लेकिन उन्होंने निश्चय का सबूत निश्चिंत स्थिति से दिया। हम सब बाबा के बच्चे, नए हैं या पुराने, हम बाबा के पार्ट को देख रहे हैं। बाबा का पार्ट साकार में 33 साल चला, उसके बाद 18 जनवरी बाबा व्यक्त हुए 69 में, और 21 जनवरी को बाबा का पार्ट 21 जनवरी को शुरू हुआ। और बाबा ने इतना बच्चों की दिल से पालना की, मैं खुद 45 साल बाबा के साथ बैठा हूँ, मुरली लिखी है, बाबा ने जो भी बोला 12 घंटा 14 घंटा एक एक बच्चे की पालना की। पुराने जानते हैं बाबा रात को शाम को 6:30-7 बजे आते थे और कभी कभी सुबह 8 बजे 7 बजे के बाद जाते थे। 12-13 घंटा अखंड गुलजार दादी ऐसे ही बैठी है और बाबा उनके द्वारा बच्चों से मिल रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। हम लोग भी 88 में 20 मार्च 88 की बात मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद ये पर्सनल मिलना बंद हुआ, क्या कारण था पता नहीं। बाबा ने संदेश भेजा गुलजार दादी के द्वारा कि बाबा मधुबन निवासियों से मिलना चाहते हैं अलग से। तो दादी ने बड़ी खुशी से कहा है तो बहुत अच्छी बात है। उस समय करीब 200 मधुबन निवासी थे, अभी तो हजारों में है। हम 120 भाई थे, 40-50 बहनें थी। तो बाबा को बुलाया शाम को 6:30 बजे। बाबा आए 10-15-20 मिनट पहले, मुरली सुनाई और फिर मिलना शुरू किया। पूरी रात, सुबह 7 बजे मेरा नंबर आया, मुझे याद है, पूरी रात बाबा केवल 120 भाइयों से मिले, बहने रह गए। और उसमें इतने वरदान दिए, इतने वरदान दिए, जो आज वरदान आप सुनते हो मुरली के नीचे, उसी समय की देन है वो। इतने वरदान हम सबको दिए। 12-13 घंटा बाबा का व्यक्त पाठ चला, अथक बन करके दादी ने सेवाएं की। और अभी वर्तमान समय 48 साल से हम सब अव्यक्त पालना ले रहे हैं। 2-3 साल से दादी का रथ काफी कमजोर हो गया, और कमजोर होने के कारण आप सब देखते हो सुनते होंगे कई बार बाबा की जो अव्यक्ति आवाज है वो बदल जाती, फिर साकार आवाज आ जाती, दादी की आवाज आ जाती। कई बाबा के बच्चे संशय बुद्धि बन करके इतने प्रश्न उठाते, पता नहीं शिव बाबा आता है या ब्रह्मा बाबा आता है या दोनों नहीं आते या दादी अपनी आवाज में बोलती। कई प्रकार के संशयात्मक प्रश्न टीचर्स बहनों से भी पूछते हैं, मधुबन में भी पूछते हैं, और कई तो पता क्या कहते हैं, कोई कोई जाके एक दूसरे के पास क्लास करा के आए हैं, मेरे पास तो सब समाचार आते हैं, वो कहते हैं कि अभी तो श्री कृष्ण का जन्म हो गया, अब ब्रह्मा बाबा नहीं आता। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें क्लास में सुना करके लोगों को भ्रमित कर देते। अब बाबा की अव्यक्त पालना, अव्यक्त पाठ, जब तक सतयुग की स्थापना नहीं हुई तब तक ब्रह्मा की आत्मा स्थापना के पाठ के साथ बंधी हुई है। और वो आत्मा का जाना माना, श्री कृष्ण का जन्म होगा तो पहले वो घर जाएगी, ऐसे तो डायरेक्ट जन्म नहीं लेगी ना, सूक्ष्म वतन में है। लेकिन कई लोग ऐसे ऐसी बातें सुना करके ब्राह्मण आत्माओं को भ्रमित करते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि को भी संशयात्मक बना रहे हैं। इसलिए इस बात को मैं आपके सामने रखता हूँ। शास्त्रों के अंदर भी श्री कृष्ण के जन्म की कई बातें सुनाई गई हैं, बाबा ने भी सुनाई है। उसमें दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जब अंत समय में जलमयी हो गई तो जलमयी के बीच में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ वो बच्चा आया। दूसरा दिखाते हैं गर्भ महल से उसका जन्म हुआ। तीसरा दिखाते हैं वो जब अवतरित हुआ, जन्म लिया तो चारों तरफ प्रकाश हो गया, लाइट ही लाइट हो गई। बाबा ने भी कई रहस्य श्री कृष्ण के जन्म के बारे में सुनाए हैं। जब तक कलयुगी सृष्टि का महाविनाश नहीं होगा, शिव बाबा के साथ पहली सजनी तो ब्रह्मा ही है, वो आत्मा जाएगी, उसके साथ बड़ी बारात जाएगी। कलयुग में पतित दुनिया के अंदर देवताएं पांव कैसे रख सकते, जो कहते हैं उनसे बात पूछनी चाहिए, क्यों आप ऐसा प्रचार करते हो, उल्टा प्रचार। जब तक ब्रह्मा बाबा ऊपर गया नहीं तब तक वो आएगा नहीं, जाएगा टच करके आएगा, लेकिन आएगा तो कहाँ आएगा, जब फुल सृष्टि पर जलमयी होगी, माना बहुत बड़ा विनाश होगा, और ये भारत खंड जो खंड बचेगा उसको ही भारत कहेंगे, अविनाशी खंड होगा, और वो उसी शेप में होगा जैसे पीपल का पत्ता होता है, चारों तरफ पानी है, उसके बीच में टापू है, अलग अलग टापू भी आएंगे जो बाबा कहते हैं तुम्हारे शहर के स्थान बनेंगे, लेकिन भारत अविनाशी खंड है, वहां पर जलमयी के बाद इसी भूमि पर श्री कृष्ण का जन्म होगा। और वो समय अभी समीप दिखाई दे रहा है, विज्ञान भी कह रहा है, सब लोग चिंतित हैं, इतनी जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, अचानक बहुत बड़ा महाविनाश होगा। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा, पहले नहीं। तो इसलिए ऐसी ऐसी बातें बाबा के पार्ट से लेकर के संशयात्मक नहीं बनना। जिस तरह से बाबा की पालना चल रही है उसमें बहुत से रहस्य हैं, राज हैं। अब कई बच्चे कहेंगे हम तो बाबा से मिलने आए, दादी नहीं आई, हमको बुला लिया गया। लेकिन दादी का रथ बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। अगर ले भी आए तो प्लेन से लाना करना काफी तकलीफ होती है। बाबा के इतने सब बच्चे हैं, बाबा को जवाबदारी, बाबा को खुद चिंता है, मेरे को बच्चों को कैसे भाषणा देनी है, कैसे अनुभव कराने हैं, कैसे पालना करनी है। हम लोग अपनी बुद्धि को क्यों चलाएं, बच्चे उसके हैं। और वो जानता है खुद ही कि मेरे को बच्चों को कैसे पालना देनी है। मैं आपको एक सचमुच अनुभव की बात कहता हूँ, अगर बाबा के अव्यक्त मिलन का अनुभव आप करना चाहते हैं, आप सवेरे अमृत वेले से कल का दिन बहुत अव्यक्त स्थिति में अंतर्मुखी होकर के सवेरे से ही अव्यक्त वतन की सैर करना। कई आत्माओं को अच्छे अच्छे अनुभव भी होंगे और बाबा साक्षात्कार भी करा सकता है, क्योंकि ये साक्षात्कार की लीला के बिना अंत समय में प्रत्यक्षता नहीं होगी, वाणी की आवाज के द्वारा नहीं होगी। इसलिए किसी भी प्रकार का प्रश्न न करके बहुत अच्छी स्थिति बनाओ। जिस स्थान पर आप बैठे हों, हाल भर जाएगा, 20,000 की लगभग संख्या मैं समझता हूँ होगी। जहाँ पर भी आप बैठेंगे कल शाम के समय जब बाबा का अवतरण होता है, उस समय आप वो अनुभव करेंगे जैसे बाबा बॉम्बे से नहीं अपने वतन से आपको दृष्टि देगा और अवश्य देगा। लेकिन अपनी अव्यक्त स्थिति को कायम रखना, बहुत अच्छी स्थिति में बैठना है। मैं इस शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर एक लाइट का ओरा है, मैं बहुत पवित्र शुद्ध शक्तिशाली एक चमकती हुई मणि हूँ, और बाबा का उसी रूप में आवाहन करना। आपको अनुभव होगा कि बाबा इस सभा में आए, दृष्टि दी, शक्ति दी, वरदान दिए, और उन वरदानों से आप भरपूर अनुभव करेंगे। तो बाबा के हर पार्ट में राज। अभी तो आपके प्रश्न कुछ भी नहीं होंगे, जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा, जब अव्यक्त हुए साकार, ब्राह्मणों के अंदर इतनी जबरदस्त हलचल थी, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे घर में जब ये समाचार मिला, बिल्कुल ये झूठा है, हो ही नहीं सकता, ब्रह्मा बाबा चाह ही नहीं सकता, ये कैसे किसने लिखा है। मेरे पिताजी इतनी बहस करने लगे कि बिल्कुल झूठा पत्र है, पत्र आया था, मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। और फिर जब ये पक्का हो गया कि सचमुच वो शरीर छोड़ दिया, अब मुरली कैसे चलेगी, अब यज्ञ की पालना कौन करेगा, यज्ञ कैसे चलेगा, क्या होगा, कोई पता नहीं था, बिल्कुल अनिश्चित। और आज इतना वृद्धि हुई, इतना विस्तार हुआ, आज हम देख करके कितना वंडर करते, क्या यज्ञ था, कितना छोटा सा, भारत के अंदर 100 केंद्र भी मुश्किल से, और आज हजारों की संख्या में बाबा के बच्चे देश विदेश 140 देशों में बाबा के केंद्र। कितना वंडरफुल अव्यक्त पार्ट। किसी भी विश्व के कोने में बैठी हुई आत्मा ये अनुभव करती है बाबा हमारे साथ है। जब बाबा कहीं भी अनुभव अपना करा रहा है तो हम क्यों हदों में फंसे, उससे भी बाबा अभी उपराम ले जाना चाहता है। अब समय आ गया हम अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव करें, और इसके पीछे अभी कई प्रकार के राज समाये हुए हैं। इसलिए कभी भी प्रश्नात्मक बुद्धि, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो नहीं हो सकते। प्रश्न तभी उठते हैं जब किसी भी प्रकार का डाउट होता, संशय होता। हम सब बाबा के बच्चे बहुत निश्चिंत स्थिति में रहें, बाबा आपके हर पार्ट में कुछ न कुछ रहस्य राज भरे हुए हैं। इसलिए जैसे अपने आप में निश्चय है, मैं देवता घराने की आत्माएं, मैं विजयी आत्माएं, मैं कल्प कल्प की विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ऐसे ही बाबा के हर पार्ट में फुल निश्चय बुद्धि बन करके बाबा के साथ का कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो, ये निश्चय की विजय है। हलचल में नहीं आना। कई लोग ऐसी उल्टी अफवाहें फैला करके बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चों को भी संशय बुद्धि बना देते, इसलिए कभी भी कोई भी बातें किसी की सुनने की जरूरत नहीं। बाबा का यज्ञ, बाबा के बच्चे, बाबा का कार्य, जब तक सतयुग की स्थापना नहीं हो गई, जय जय कार का नगाड़ा नहीं बजेगा, तब तक ब्रह्मा बाबा की आत्मा यज्ञ से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए बहुत निश्चय बुद्धि विजयी। और तीसरा है, समय बहुत बहुत कल्याणकारी है, कैसा भी समय आए। बाबा के जो त्रिकालदर्शी बच्चे हैं वो कभी भी भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। आज की दुनिया के अंदर सबके आगे भविष्य अनिश्चित है, कल क्या होगा किसी के आगे क्लियर नहीं है। अब बाबा के बच्चों से पूछ लो, किसी से पूछो कल क्या होगा, माताएं कल क्या होगा, बोलो बहुत अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा। अगर एटम बम गिरेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। मैं एक जगह क्लास कराने गया था, एक माता अचानक क्लास में खड़ी हुई, कहती भाई साहब एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं बहुत मूंझ गई हूँ, क्या प्रश्न का उत्तर है, क्या प्रश्न है आपका। तो कहती है कि आज छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितना गलत हो रहा है, आपको नहीं आता ये बहुत बहुत गलत हो रहा है, पाप हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है क्या। बाबा कहता सब अच्छा हो रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण है, तो क्या इसमें कल्याण है, क्या अच्छा है। वो जैसे गर्म होकर मेरे से प्रश्न कर रहे। और मैंने कहा बहन बहुत कल्याणकारी, बहुत अच्छा हो रहा है। तो बच मूझ गई, कहती और अच्छा, आप भी वही बोल रहे। मैंने कहा अगर पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे। अगर कोई भी चीज की अति नहीं होगी तो अंत कैसे होगी। इसलिए किसी बात में ये क्यों कह रहे हो गलत हो रहा है, जब ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है, हर दृश्य कल्याणकारी है, तो हमारे प्रश्नों में क्वेश्चन ऐसा क्यों आ जाता टेढ़ा टेढ़ा, सब अच्छा हो रहा है। ये सब अति की निशानियां हैं, और कलयुग में जब तक अति नहीं तब तक अंत कैसे आएगी, और अंत नहीं होगी तो आदि कैसे होगी, सतयुग कैसे आएगा। इसलिए कभी भी कोई के हिसाब किताब को देख करके, कोई ड्रामा के नेगेटिव दृष्टि को देख करके हलचल में नहीं आना। ये व्रत ले लो कि हर सीन में हमें मुस्कुराना है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, हमारे सेंटर्स पर 8-10 रहते हैं, कहीं टकराव हो जाते, कहीं मन मुटाव हो जाते, कहीं ऐसा लगता है कि बाबा क्या कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। बाबा के बच्चे मुंह जाते उलझ जाते कि ज्ञान क्या कहता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या है, ऊपर क्या है, मुंह जाते। और बाबा कहता बच्चे मुझो नहीं, इसमें भी मुस्कराना सीख जाओ, ये बहुत अच्छा हो रहा है। मुस्करा सकते हैं माताएं, ऐसे समय पर मुस्कराना आएगा कि कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अरे बाबा कहते हैं क्यों क्या नहीं करो, ब्राह्मण आत्माएं 84 जन्म साथ रही हो, अंतिम समय में अपने जो हिसाब बनाए हैं सब चुप तो करोगे, चुप तो कहीं दूसरी जगह करोगे जाके क्या। जिनके साथ आपने पार्ट प्ले किए हैं कहीं न कहीं अभी आकर के अंत में मिले हो, और अंत में मिल करके जरूर कुछ गलत किए हैं, कुछ उनको दुख दिया है, उनको परेशान किया है, तो वो भी अपने समय में परेशान कर रहे हैं। इसलिए बहुत निश्चिंत होकर के, साक्षी होकर के उस हिसाब किताब को योग से, खुशनुमा जीवन से उसको पूरा कर दो, चिंता नहीं करो। इसलिए कभी भी बाबा के परिवार में, इतना बड़ा परिवार, दैवी परिवार, ब्राह्मण कुलभूषण, उस परिवार में प्रश्न तो उठ जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बाबा कभी कभी मुस्कुरा के कहता है इसको ज्ञान की कमी है, जिसने ज्ञान को समझा नहीं है। ज्ञान युक्त आत्माएं कभी भी किसी भी दृश्य को देख करके प्रश्न नहीं करती, वो पुलिस स्टॉप लगा देती। तो निश्चय बुद्धि बच्चे जो हैं, वो किसी भी नेगेटिव बात को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव में बदल देते हैं। आप सब बाबा की मुरलियों की स्टडी करते होंगे, वरदान कभी कभी ऐसे आते हैं, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, बुराई में अच्छाई का अनुभव। अब कहेंगे ये बुरा हो रहा है और मैं इसमें अच्छा क्या अनुभव करूं, इतनी गलत चीज को मैं अच्छा कैसे समझूं, ये तो शायद उल्टा ज्ञान दिया जा रहा है। बुद्धि है, दिमाग लगाते हैं। बाबा कहता बच्चे कम से कम कोई बुरी सीन आई, पास हो गई, आप अनुभवी बन गए, आगे के लिए बच गए, अच्छा ही हुआ ना, बुरा क्या हुआ। अब इस बात को समझना, अपनी निश्चिंत स्थिति बनाने के लिए इसमें भी निश्चय बुद्धि कि कुछ भी हो रहा है इसमें कुछ न कुछ हमें सिखाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये पेपर आया है, क्लास ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ज्ञान को यथार्थ रीति से समझ करके यूज करो। स्वयं में पूरा निश्चय है, बाबा में संपूर्ण निश्चय है, और ये कल्याणकारी संगम का समय है, परिवर्तन का समय है। कलयुग जाएगा ही, कोई रोक नहीं सकता, और सत्ययुग आएगा ही, है निश्चय। कि अभी भी ऐसा लगता है पता नहीं कि हजारों साल और दुनिया चलेगी, शास्त्र तो कहते थे कलयुग 40,000 वर्ष का ही अभी बीता है, अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। बाबा कहता बच्चे अभी इतनी अति के बाद और कौन सी अति देखना चाहते हो, जहाँ विकारों का फुल फोर्स है, रोज आए दिन एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, अभी बटन दबा दूंगा, अभी परमाणु बम छोड़ दूंगा, रोज एक दूसरे पर आंख दिखा रहे हैं, बाबा रुका हुआ है। लेकिन ये अंत की सब निशानियां हमारे सामने हैं। इस कलयुगी सृष्टि का किसी दिन भी अचानक अंत हो जाए, हम सब तैयार हो जाए, एवर रेडी। अपनी स्थिति को अचल, अडोल, एक रस बनाओ। निश्चय बुद्धि, जो कुछ सीन होगी वो हमारे सतयुग का दरवाजा खोलने के लिए होगी, स्वर्ग आएगा, और स्वर्ग में हम सब बच्चे अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करें, बिना धर्मराज की सजाओं के घर जाएं, और आने वाली दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त हो, उसके लिए जो समय हमें मिला है, जो ये अंतिम घड़ियां मिली हैं, अपनी बुद्धि को बहुत शांत रख करके, धैर्यवत रख करके, बाबा के साथ रह करके, निश्चय बुद्धि बन करके, विजयी बन करके रहो। कुछ भी हो जाए, माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कोई भी व्यक्ति मुझे जरा भी हिला नहीं सकता, क्यों प्रश्न उठाना ही नहीं। कई आजकल पता क्या करते, बाबा की मुरलियां लेकर के अपनी अपनी बातें उसमें डाल करके मुरली को ही तोड़ फोड़ करके ब्राह्मणों के आगे रखते हैं, देखो मुरली में तो ये कहा है, ये कह रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सब बातों में। कई बच्चे बाबा के बच्चों को उलझा देते हैं, मुझा देते हैं, बाबा से दूर कर देते, यज्ञ से दूर कर देते, परिवार से दूर कर देते, ये बहुत बड़ा पाप है, इसको पाप कहते हैं। बाबा कहता बच्चे किसी के चक्करों में नहीं आना, कोई अपनी बुद्धि का कितना भी चमत्कार दिखाए, आप उस चमत्कार के चक्कर में नहीं आना। बाबा में पर पूर्ण निश्चय रखो, बाबा की पढ़ाई में, उसके गुप्त पार्ट में, उसकी सूक्ष्म सकास का अनुभव करो, मिलन का अनुभव करो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, और केवल एक लक्ष्य सामने रख करके आगे बढ़ो कि मुझे तो अपनी जीवन संपूर्ण पावन पवित्र योगी बनानी है, मुझे बाबा के जैसा संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाकी ये बातें आएंगी, लोग आएंगे, मन मुटाव करेंगे, इधर की बात उधर करेंगे, बाबा की मुरलियों में भी कई ऐसी बातों के क्वेश्चन लेके आएंगे टेढ़े मेढ़े। बाबा कहता है बच्चे ध्यान रखो, हियर नो इविल, यही इविल है, व्यर्थ है, इविल बातें न सुननी है, न सुनानी है, न किसी के चक्कर में आना है। जो बाबा मुरली में कह रहा है, मधुबन से मुरली आपके पास आ रही है, मुरली सुनो, प्यार से पढ़ो, न समझ में आए कोई भी बात तो अपनी निमित्त बहनों से पूछो, और अगर उनको भी समझ में नहीं आती है तो मधुबन में हम सब बैठे हैं, आप पूछो जो पूछना है, कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं करो, नहीं तो आपको सब उलझाएंगे, इधर की बात उधर सुनाएंगे और आपके निश्चय की परीक्षा यही है और कोई परीक्षा नहीं। निश्चय बुद्धि बच्चे बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं, बाबा हमें अपने समान बना करके, संपन्न और संपूर्ण बना करके अपने साथ ले जाएगा, ये संपूर्ण निश्चय है। और फिर अपने सतयुग की राजधानी आएगी और हम सब देवी देवताओं के रूप में अवतरित होंगे। ये बनी बनाई ड्रामा की भावी है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता, चाहे जितना भी उथल पुथल हो जाए, लेकिन इसमें निश्चय बुद्धि रहना और निश्चिंत होकर के सदा विजयी भव के वरदानी बन करके रहना। ओम शांति। 3 मिनट बाबा को याद करो और पक्का संकल्प करना कल मुझे बाबा को इस धरनी पर अवतरित करके दिखाना है, अनुभव करके देखना है।